ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण तो श्रीमद् भागवतम है महापुराण बहुत सारे पुराने हैं 18 पुराण हैं और उनमें से सारे पुराणों में से श्रेष्ठ हैं श्रीमद् भागवत इसलिए भागवतम को अमल पुराण भी कहा गया है मतलब भागवत पूरा भागवत में श्रीमद् भागवतम में कोई मल नहीं है एकदम विशुद्ध निर्मल ये भौतिक जगत का मल क्या है भौतिक जगत के सारे विषय ही मल हैं और इस मल किसके द्वारा प्रभावित होता है प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रभावित होता है सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण केवल तमोगुण ही नहीं रजोगुण भी मल है या कि सत्वगुण भी मल है भौतिक जगत के सत्वगुण भी मल है अर्थात भौतिक जगत के जो कुछ है भला बुरा सब कुछ ही गंदा है तो पुराणों में से 6 पुराण है तामसिक और 6 है राजसिक और 6 है सात्विक 6 गुण 3 गुण 18 पुराण तमोगुण के द्वारा प्रभावित हैं 6 पुराण रजोगुण के द्वारा प्रभावित हैं 6 और सत्वगुण के द्वारा प्रभावित हैं और 6 ऐसे 18 पुराण है बल्कि श्रीमद् भागवतम जो है ये अमल पुराण है ये सत्वगुण से भी परे हैं अर्थात ये विशुद्ध सत्य का पुराण है जहां भगवान का लीला का वर्णन भगवान की शक्ति का वर्णन सारे तत्व एकदम विशुद्ध रूप से इसका वर्णन इसलिए भागवतम के भागवतम अध्ययन करने का भागवतम समझने का पात्रता है क्या पात्रता या योग्यता होता है जो भौतिक जगत से परे चले गए हैं उन्हीं केवल भागवतों की अध्ययन या समझने का लायक इस विषय में भागवतों की शुरू में ही कहा गया है कि जब धर्म प्रज्ञित कैतव अत्र कैतव मतलब झूठा झूठ जो धर्म कैतव धर्म जो असल में धर्म नहीं है बल्कि लगता है धर्म कौन सी धर्म इस भौतिक जगत के भोग करने वाला जितने सारे धर्म भौतिक जगत के गुणों के द्वारा प्रभावित जितने सारे धर्म जिसके बारे में भगवान भगवद गीता के अंत में बोले हैं सर्वधर्मान परित्यज्य ये सर्वधर्म ये जो धर्म है असल में ये धर्म नहीं है लगता है धर्म बल्कि कैतव कैटब का मतलब होता है झूठा, चीटिंग, या जो धर्म प्रताड़ना से पूर्ण है, लगता है धर्म बल्कि असल में धर्म नहीं। जैसे बाजार में मिलता ना, बाजार में जो क्या उसको क्या बोलते हैं, जो डुप्लीकेट फेक इमिटेशन नकल, तो ये जितने सारे धर्म इस भौतिक जगत में चलता है वो सारे नकली माल हैं, सही माल नहीं है, नकली। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जितने सारे नकली धर्म हैं उसको हटा, उसको त्याग दो। प्रज्जित, प्रज्जित मतलब भली भांति उसको हटा दो। जैसे झाड़ू लेके हम साफ करते हैं, तो वैसे वो सारे धर्म को विदा कर दो। भगवान गीता के अंत में बोले हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, वो कौन सी धर्म है, वो जिस धर्म में बोलता है धनम देही जशो देही नौकरी देही, ये जो है ये सारे हैं नकल धर्म। बल्कि असल धर्म क्या है, असल धर्म होता है ये सर्वधर्मान परित्यज्य कृष्णम एकम शरणम। कृष्ण को शरण लेने का जो धर्म है वही है एकमात्र धर्म, बाकी सब धर्म के नाम में चलता है बल्कि धर्म नहीं है। पृथ्वी ते ज्योतो किच्छु धर्मो नामे चले भागवत कहे ताहा परिपूर्ण छले। इस पृथ्वी में, इस भौतिक जगत में जो कुछ धर्म के नाम में चल रहा है वो सारे धर्म नहीं है। भागवत कहता है कि वो सारे छलना से पूर्ण है। ये छल, छल मीन्स प्रिटेंशन, ये छल शब्द हिंदी में भी आता है छलना, तो ये सारे छलना है, ये चीटिंग है, ये नकली माल। तो नकली माल कौन लेता है, जो सेकंड क्लास थर्ड क्लास व्यक्ति जो है वो नकली माल से ही चलाते हैं, क्योंकि वो सस्ता है। बल्कि जो फर्स्ट क्लास आदमी है वो क्या करते हैं, वो ज्यादा पैसा देके सही माल खरीदते। तो वैसे ही मनुष्यों में से जो उत्तम है वो वैसे धर्म के पीछे नहीं भागेंगे। वो कौन से धर्म, धर्म के बारे में उत्सुक होंगे, कौन से धर्म के प्रयासी होंगे, ये सही धर्म। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो अगर हम, हमको सही माल खरीदना है तो क्या करना है, जो नकली माल जो है उसको तो विदा करना होगा, उसको निकालना होगा। तो इसलिए पहला ये है, देखिए गीता में भी भगवान ये बोले हैं और भागवत के, गीता के अंत में जो भगवान बोले हैं भागवतम के शुरू से, शुरू में भगवान वही कह रहे हैं। गीता का अंतिम उपदेश क्या है भगवान का, सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म परित्याग करके माम एकम शरणम ब्रज। इसका मतलब क्या होता है, असल धर्म क्या है, माम एकम शरणम, भगवान का शरण लेना ही असल धर्म, माम एकम शरणम। और देखिए गीता का ये अंतिम उपदेश है और भागवतम का शुरुआत में ही क्या निर्देश हो रहा है, धर्म प्रज्जित कैतव अत्र परम निर्मत्सराणाम सता। जब सारे धर्म को ऐसे त्याग दिया जाए तो हृदय निर्मल हो जाता है, और जब हृदय निर्मल होता है तभी हम अमल पुराण श्रीमद् भागवतम समझने का लायक बनते हैं। जब तक भौतिक जगत का भोग करने का इरादा रहता है तब तक भागवतम को हम समझ नहीं पाते। भागवतम को हम सही रूप से उपलब्धि तभी कर सकेंगे जब हम भौतिक जगत के सारे जो गंदगी है उससे मुक्त हो। भौतिक जगत का गंदगी क्या है? भौतिक जगत का गंदगी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये छह हैं हृदय का गंदगी। इसका अंतिम कौन सी है? काम से शुरू करके लास्ट में क्या है? मात्सर्य। तो भागवतम में क्या कह रहे हैं? निर्मत्सराम अर्थात मात्सर्य भी जब निकल दिया गया, मात्सर्य से भी जब मुक्त हो गए हैं, निर्मत्सर बन गए, तो निर्मत्सर का मतलब होता है दिल बिल्कुल साफ हो गया। हाँ, अर्थात जो लास्ट में जो था वो अगर वो भी अगर खत्म हो गया तो मतलब उसके पहले जो कुछ था वो भी निकल गया। तो निर्मल सर का मतलब होता है पूर्ण रूप से निर्मल जब हो जाता है तब परम निर्मल सरा नाम सतम वेदम। वेदम शब्द का अर्थ क्या है? समझते हैं। वेदम तभी केवल समझते हैं। कौन सी वस्तु? वास्तव मात्र वस्तु। ये वास्तव वस्तु, ये वास्तव वस्तु कौन है? परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाएं। भगवान को लीला हम कब समझ सकेंगे? जब हमारा दिल पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए, जब हृदय निर्मल हो जाते हैं तभी केवल हम भगवान के वाणी और भगवान के लीलाएं समझ सकते। निर्मल सरान बाधव वेदम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम। शिवदम शिव का मतलब क्या है? शिव का मतलब है शांति। ये शांति प्रकृत शांति प्रदान करते हैं। शिवदम शांति प्रदान करते और तापत्रय उन्मूलनम। इस भौतिक जगत के जितने सारे ताप हैं, क्लेश हैं, कष्ट हैं, उसको उन्मूलनम, उसको पूर्ण रूप से उसको निकाल दिया जाता है। उसका लेश भी नहीं रहता, उसका कण भी नहीं रह जाता। जब हम भगवान को शरण, मतलब हमारा हृदय जब निर्मल हो जाता है, जब हम भगवान को समझ लेते हैं, भगवान के उपदेश को निर्मल रूप से ग्रहण कर लेते हैं, तब हमारा दिल पूर्ण रूप से शांत हो जाता है और कोई किसी प्रकार का ताप या क्लेश या कष्ट और नहीं रहता। तापोत्रयन उन्मूलनम, ये है श्रीमद् भागवते महामुनि कृति। महामुनि व्यासदेव ने इस श्रीमद् भागवते को प्रदान किया। किंग बा परेश्वर, और दूसरा कोई वस्तु का क्या जरूरत है? जब भागवत मिल गया है बस, और किसी का जरूरत नहीं, कोई भी चीज का जरूरत। जब श्रेष्ठ वस्तु जब मिल जाता है, जब करोड़ रुपए मिल जाता है, तब तो क्या हजारों रुपए के बारे में चिंता होता है? तो वैसे जब भागवत मिल जाता है बस, और किसी का जरूरत नहीं रहेगा। शिवदम तापोत्रयन उन्मूलनम, ये है श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परमेश्वर। वेदम भागवतम समझने से ये फायदा, ये है श्रीमद् भागवत। श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा इस दो शास्त्र के आधार पर, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत। भगवद गीता के बारे में कल हम बताया था। भगवद गीता क्या है? सारे उपनिषदों का सार है भगवद। सर्वो उपनिषदो गावो, याद है इस श्लोक का? हाँ, कल मैं बताया था, कौन थे क्लास में कल? तो ये श्लोक किसको पता है? इस श्लोक का ओके तुम बता। ये जो सर्व उपनिषद गावो, इसका मतलब क्या है? हाँ ठीक है, ये माइक ठीक
उपनिषद
उसका सार ये गीता में दिया हुआ है। अच्छा, सर्वोपनिषद गावो का मतलब, गाव का मतलब है गाय, सारे उपनिषद
दूध देती है ऐसा आपने समझाया
था जैसे। हाँ, यस जाने
सभी उपनिषदों का जो सभी उपनिषद है उनको गाय से कंपेयर किया गया है, उसमें गीता को गाय के दूध के रूप में कंपेयर किया है। दूध जो है वो गीता।
अच्छा, दूध कब मिलता है?
जब हम उसे पीते हैं।
और दोहन कौन करते कर रहे हैं?
दोहन करने वाले श्री कृष्ण है और अर्जुन बछड़े के समान है और
दूध
भक्ति जो है वो दूध।
अच्छा, हम दूध धाम में तो गीता का जो उपदेश है वो है गाय का दूध, और वो दूध कौन पीते हैं?
अर्जुन जैसे शिष्य, बछड़े के रूप में जो अर्जुन जैसे शिष्य हैं,
सुधी सुधी भोक्ता, जिसका धी का मतलब बुद्धि, जिसका चेतना सुंदर है गंभीर है, वो लोग ही तुम पी रही हो। ये गीता का, गीता के उपदेश जो ग्रहण कर रहे हैं वही सूखी है, सही बुद्धिमान है, सुंदर धीमान है। बहुत अच्छा। हाँ, तो गीता का मतलब तो ये क्या हमें पता चला? ये सारे उपनिषदों का सार निचोड़ है भगवत, और सारे पुराणों का श्रीमद् भागवत। अच्छा, इस सिलसिले में कल मैं एक श्लोक बताया था, किसको याद है? एनीवन एल्स? यस, वेरी गुड। अच्छा, ये श्लोक कौन सी थी? अच्छा, गौरा गोपी बता, गौरा गोपी निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखाद अमृतम द्रव संयुतम। शुको मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरह रसिका भूबि भावुका। भागवत कौन पीते हैं? जो रसिक व्यक्ति है, रसिक। रसिक शब्द का शब्द आता है हिंदी में, कौन है रसिक? जो रस को आस्वादन करते हैं। तो ये कौन सी रस है? ये है भक्ति रस, भगवत प्रेम रस। तो प्रेम रस किस पर आधारित है? पांच मुख्य रस हैं और सात गौण रस। मुख्य रस कौन सी है? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधु। ये भाव जो है, ये रस जो है, ये स्थाई भाव है। अर्थात किसी भक्तों ने भगवान के साथ शांत रस में युक्त है, वो भक्त क्या करते हैं? शांत मतलब कोई उलझन नहीं है, उन्होंने क्या करते हैं? बैठ बैठ के केवल भगवान का ही ध्यान कर रहे हैं, भगवान के लीला के ध्यान, भगवान के उपदेश के ध्यान करते हैं, मन में भगवान का ही चिंतन करते हैं। ये शांत रस में कौन होते हैं? जो मुनि ऋषि हैं वो लोग शांत रस। और इसके बाद, शांत के बाद दास्य, जो भगवान को सेवा करने के, सेवा में युक्त होते हैं, दास के भाव लेकर, प्रभु जी मैं हूं दास, ये भावना लेकर जो सेवा करते हैं वो है दास। तो वैसे जीव का स्वरूप में हर जीव ही भगवान के नित्य दास है। शुरुआत ये दास भक्ति का शुरुआत दास रस से होता है। शांत रस में भक्ति प्रकाशमान नहीं होता। क्यों? क्यों? क्योंकि भक्ति जो है, भक्ति का मतलब है सेवा। जो आप बैठ करके भगवान को चिंतन हो रहा है, बल्कि सेवा अगर नहीं हुआ है तो ये भक्ति नहीं। भक्ति का मतलब कुछ करके दिखाना, दिखाना नहीं, कुछ करके दिखाना। क्या दिखाना? अपना प्रेम को, प्रेम दिखाना। भगवान मैं तुमको प्यार करता हूं, तो इसका मतलब क्या है? भगवान मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। तो ये प्रेम का प्रकाश इसलिए दास्य रस से होता है। और बाद में अगर भगवान चाहते हैं तो हमें अपना सखा बना सकते हैं। भगवान बोल सकते हैं कि चलो तुम बहुत अच्छा से मेरा सेवा किए हो, अब तुम मेरा दोस्त बन जाओ। तो ये जो भाव है, ये जो अधिकार है, ये भगवान ही देते हैं। हम जबरदस्त उनसे ले नहीं सकते। हम नहीं बोल सकते कि मैं भगवान का सखा बनूं। जैसे कोई बड़े व्यक्ति हैं, जैसे भारत में ऐसे क्या, जैसे सोचो अंबानी, बहुत सारे आदमी चाहता है कि अंबानी उसका दोस्त बने, बल्कि वो क्या दोस्त बन सकता है? ऐसे जाके वो क्या बोल सकते हैं, अंबानी मैं तुम्हारा दोस्त हूं? नहीं। और क्या मनमोहन सिंह को जाके क्या बोल सकते हैं, मनमोहन कैसे हो? बल्कि मनमोहन अगर बोलेंगे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तब वो दोस्ती बन सकता है। तो ऐसे साधारण व्यक्ति के लिए अगर ऐसा होता तो भगवान के बारे में क्या कहना। भगवान, हम भगवान को दोस्त नहीं बन सकते, सखा नहीं बन सकते। अगर भगवान हमको अपना सखा बनाते हैं तो दूसरी बात। तो सख्य रस, दास्य के बाद है सख्य। सख्य के बड़े ने क्या, वात्सल्य, भगवान का पिता माता बन जाना और भगवान पुत्र बनते बन जाते। और इससे भी आगे बढ़कर है मधुर या श्रृंगार, मधुर प्रेमिक प्रेमिका के बीच जैसा संपर्क रहता है, वैसे ही भगवान के साथ संपर्क प्राप्त हो, वैसे संपर्क भगवान के साथ जो वहां भगवान है परम प्रेमिक और भक्त बन जाते हैं प्रेमिकाएं। तो ये पांच मुख्य रस है, साधारणतया इसका परिवर्तन नहीं होता। जो शांत रस में है वो शांत रस में ही वो सोचते हैं कि ये मेरे लिए सबसे अच्छा। जो दास रस में है वो सोचते मेरे लिए ये ही सर्वोत्तम है। अगर दिया भी जाए नहीं लेना चाहिए। हनुमान को भगवान सखा बनाने का अवसर दे रहे थे। हनुमान बोला जरूरत नहीं, मैं जो हूं सो हूं, मैं आपका दास हूं, ये दास भाव लेकर ही मैं रहना चाहिए। तो वैसे ही सखाएं वो सोचते हैं कि ये भगवान का सखा बनना ही श्रेष्ठ काम है, श्रेष्ठ प्राप्ति, मैं भगवान का सखा हूं। वो नहीं बोलते हैं, सखा नहीं बोलते हैं, मैं नंद महाराज बन जाऊं या मैं ललिता बनूं या विशाखा। जाड़ जय रोष खाए श्री स्वर्ग, ये पांच, इसलिए इस पांच रस को स्थाई रस कहा जाता है। और जो सात जो गौण रस है उसे संचारी भाव कहा, उसका परिवर्तन होता है। हास्य, अद्भुत, वीर, रौद्र, विभत्स, भयानक, करुण, इसका प्रभाव से भगवान भक्त के मन में भगवान के प्रति भावना का उदय होता है, डेवलप्स इमोशंस भगवान, इमोशन आवेग, भाव का आवेग का संचार होता है। जैसे मल्लानाम अश्विनी, कृष्ण ने जब मंच में आए, रंगमंच में जहां लड़ाई होने वाला था चाणूर और मुष्टिक के साथ, तो कृष्ण को देखते हुए चाणूर और मुष्टिक का मन में ऐसा भावना आया, ये अशनी है मतलब वज्र, जो पहलवान है वो लड़ाई करने में उसका उसका मजा आता, तो ये वो सोचा हाँ अब एक लड़ाई करने वाला योग्य व्यक्ति पहलवान आया है हमारे समक्ष। जैसे लग रहा था कृष्ण और बलराम दो बच्चे हैं और ये चाणूर और मुष्टिक दो विशाल, तो वज्र जो है वो छोटा हो सकता है बल्कि उसका शक्ति कितना है, उसको शक्ति के साथ मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो कृष्ण बलराम को देखते हुए चाणूर और मुष्टिक और जो मल्लाना मल्लवीर जो था, तो पहलवान जो कुश्ती करने वाले जो पहलवान थे, उन लोगों को लगा कि ये तो अश्विनी है वज्र जैसे। मल्लानाम अश्विनी नृनांग नरवर, साधारण मनुष्य ने सोचा कि ये तो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य, मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ है ये व्यक्ति लग रहा है। तो वैसे विभिन्न व्यक्ति ने भिन्न भिन्न रूप से कृष्ण को देखा। कृष्ण आए मंच में, कृष्ण कंस को लगा जैसे मृत्यु सा मेरे समक्ष भयानक। मल्ल ने कैसी भावना की है, वीर रस को उन्होंने आश्वासन किया कृष्ण को। साधारण मनुष्य में श्रद्धा भाव का उदय हुआ, और जो बड़े व्यक्ति थे जो कृष्ण के अनुकूल ज्येष्ठ व्यक्ति थे, उन लोगों ने सोचा कि ये तो सही नहीं है, लड़ाई समान समान बराबर के बीच होता है, बल्कि ये दो बच्चे हैं और देखो ये कौन दो असुर हैं, इनके साथ ये लड़ाई क्या, ये सही नहीं है, ये अन्याय है, तो उन्होंने प्रतिवाद कर दिया। और किसी भक्त ने सोचा कि करुण उनका मन में भय है, ये किस कृष्ण कैसे इस पहलवान के साथ लड़ाई करें, और किसी ने सोचा ठीक है ये कृष्ण अब इन दोनों को खत्म कर देंगे, कृष्ण कंस को भी खत्म कर देंगे जैसा हुआ था। तो ऐसे भक्ति के द्वारा मन में जो ऐसी भावना का उदय होता है, उससे क्या होता है, उसके उसके द्वारा आनंद आश्वासन, जैसे लग रहा है भय लग रहा है क्या कृष्ण को कुछ हो जाएगा, ये भय, बल्कि भय के पश्चात जब देखते हैं कृष्ण उसको मार डाला है, तब वो भय के कारण आनंद और भी बढ़ जाए। तो भगवान आनंदमय है, और इस आनंद भगवान कैसे प्रदान करते हैं, रस के आधार के लिए, रस वही सार, श्री कृष्ण केवल रस ही रस, इसलिए जो रसिक हैं वो भगवत प्रेम को आस्वादन सही रूप से कर सकते हैं, जिसका आधार है श्रीमद् भागवत। भागवतम है निर्मल पुराण, अमल पुराण, और भागवत है महापुराण। महापुराण का लक्षण 10 लक्षण होता है, जिसके शुरू में है सर्ग, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषणम उतया मन्वंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। सो सर्ग से लेकर आश्रय, आश्रय मुक्ति के बाद भी ये इसका वर्णन है। सर्ग है शुरू, शुरू सर्ग का मतलब है सृष्टि, इस भौतिक जगत का सृष्टि। भौतिक जगत का सृष्टि कैसे हुआ है? भौतिक जगत का सृष्टि क्या बिग बैंग से हुआ है? भौतिक जगत का सृष्टि क्या प्राइमोर्डियल सूप से हुआ है? भौतिक जगत का सृष्टि कैसे हुआ है? स इक्षत, उन्होंने दृष्टिपात किया। इक्षण मतलब दर्शन, भगवान दृष्टिपात किए हैं प्रकृति के और उससे भौतिक जगत का सृष्टि। भगवान ऐसे सृष्टि करते हैं, भगवान को सृष्टि करने के लिए कुछ यहां से कुछ लेना, वहां से कुछ लेना, यहां से ईट लेना, पत्थर लेना, स्टील लेना, सीमेंट लेना, पानी लेना, मिला के बैचिंग प्लांट में डालना, ऐसा भगवान का सृष्टि वैसा नहीं है। भगवान केवल देखते हैं, बस सारे सृष्टि प्रकाश होता है। तो इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ। कल मैं बता रहा था कि भागवतम का शुरुआत कैसे हुआ था, भगवान स्वयं चार श्लोक के माध्यम ब्रह्मा जी को इस ज्ञान प्रदान किया और इसका विस्तार ब्रह्मा जी का हृदय में हुआ था। तेने ब्रह्म हृदा आदि कवये देहंती दर्शिया, श्रीमद् भागवतम का वर्णन प्रकाश ऐसे हुआ था। तो श्रीमद् भागवतम ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाश हुआ था और ब्रह्मा उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को प्रदान किया। नारद मुनि व्यास देव को, व्यास देव और बहुत या भागवत का वर्णन और प्रकाश हुआ था, बल्कि हमारे लिए धारा ऐसी ही, हमारे धारा ऐसी। नारद मुनि व्यासदेव को दिए थे। व्यासदेव कलियुग के अवस्था दर्शन करके इस हाल को, इस भयंकर स्थिति को रक्षा करने का, कुछ ये सारे समस्याएं का समाधान सोच रहे। तो उन्होंने देखा कि वैदिक ज्ञान ही केवल इस समस्याएं का समाधान कर सकता, और आम आदमी के लिए, कलियुग के मनुष्यों के लिए उन्होंने वेद को विभाग किया, वेद को सरल रूप में वेद का प्रदान किया। वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र, इतिहास, महाभारत प्रदान किए। ये महाभारत साधारण मनुष्य के लिए वेद का जो निर्देश है वो है महाभारत। और इसके पश्चात उन्होंने वेदांत प्रणयन, वेद का अंतिम ज्ञान। ये करने के पश्चात भी व्यासदेव का मन में कुछ उलझन रह गया। व्यासदेव का मन में कुछ निराशा छा गई। उन्होंने सोचने लगा, जो काम मैं करने चाहा था वो पूरा नहीं किया, बल्कि उनका समझ में नहीं आ रहा था क्यों ऐसा लग रहा, ऐसे निराशा क्यों हो रहा है, ऐसे उलझन क्यों हो रहा है। तब नारद मुनि वहां आए और व्यासदेव को समझाया, यद्यपि तुम बहुत कुछ कर चुके हो वेदांत तक, साधारण मनुष्य के लिए तुम महाभारत दिए हो और महाभारत में भगवद गीता भगवान के निर्देश तुम प्रदान किए हो और अंत में वेदांत भी तुम दिए हो, बल्कि तुम्हारा मन में जो ये उलझन हो रहा है इसका कारण तुम भगवान का निर्मल लीला का भगवान का निर्मल यश और महिमा तुम वर्णन करो। सरल रूप से, सही रूप से तुम भगवान का महिमा कीर्तन में, इसलिए तुम्हारा मन में ऐसा लग रहा है कि काम पूरा नहीं। तब नारद मुनि ने व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम प्रदान किया। ये श्रीमद् भागवतम व्यासदेव ने तब प्रणयन किए, और यह व्यासदेव की माध्यम भागवतम प्रकाश हुआ, और प्रकाशित होने के बाद व्यासदेव ने अपना पुत्र शुकदेव गोस्वामी को इस ज्ञान प्रदान किया। तब शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के पास ये भागवतम सुना, और परीक्षित महाराज के पास जब शुकदेव गोस्वामी ने भागवतम कह रहे थे तो वहां सूत गोस्वामी भी उपस्थित। इसके पश्चात सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में ऋषियों को, जो एक कलियुग स्थिति संशोधन करने के लिए, सुधारने के लिए एक 1000 साल व्यापी यज्ञ कर रहे थे, सहस्रम सममासत, सहस्र का मतलब 1000, सहस्र समम आसत, सहस्र साल व्यापी यज्ञ कर रहे थे। तो उस सभा में सुत गोस्वामी उनको भागवतम सुना, और इसके पश्चात क्या हुआ, सुत गोस्वामी जो सुनाया व्यासदेव ने उसका वर्णन किया। यद्यपि व्यासदेव ने नारद मुनि से भागवतम प्राप्त हुए थे, बल्कि जो भागवतम व्यासदेव ने लिखा वो ही अपना जो अनुभूति है, अपना जो उपलब्धि है, अपना जो जानकारी था, उसके आधार पर नहीं लिखा। सुखदेव गोस्वामी से सुत गोस्वामी, सुत गोस्वामी का जो वर्णन है वो फिर से व्यासदेव ने लिपिबद्ध किए, अक्षर के आकार में उसको प्रदान किया। तो ये है भागवतम का इतिहास, और भागवतम का सही शुरुआत होता है मैत्रेय ऋषि के साथ, जब विदुर का मिलन हुआ था। विदुर को उद्धव ने बताया कि कृष्ण ने मैत्रेय ऋषि को विदुर को उपदेश देने के लिए निर्देश दे गए। तब विदुर ने मैत्रेय ऋषि को मिलने के लिए उन्होंने हरिद्वार गए, वहां उनके साथ उनका साक्षात हुआ, उनका मिलन हुआ, दर्शन मिला। तो उन्होंने पूछे थे क्या जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए, मनुष्य को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। और मुझे पता है कि भगवान का महिमा कीर्तन ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है, तो आप कृपा करके भगवान का महिमा का महिमा बताएं। तब मैत्रेय ऋषि ने इसका वर्णन शुरू किया। मैत्रेय ऋषि पहले विदुर को सृष्टि के बारे में समझा, सृष्टि कैसे होता है। भगवान प्रकृति के प्रति दृष्टिपात करते हैं, और उस दृष्टिपात से, भगवान के दृष्टिपात से प्रकृति में महत्तत्व का, अच्छा दृष्टिपात के कारण काल का प्रभाव उत्पन्न होता है, और उस काल के प्रभाव से प्रकृति क्षोभित होती है, और तब महत्तत्व का प्रकाश होता है। महत्तत्व ही सृष्टि के मूल इंग्रेडिएंट्स, मूल उपादान है, जिससे सृष्टि का जो कुछ है भौतिक जगत किन विषय से किन उपादान के द्वारा सृष्टि हुआ है, आठ वस्तु के द्वारा, भूमि रापो अनलो वायु खंग अर्थात आकाश मन बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति अष्टद। इस आठ उपादान के द्वारा इस भौतिक जगत का सृष्टि हुई। इसमें से सबसे स्थूल है कौन सी वस्तु, भूमि मतलब मिट्टी। इससे सूक्ष्म क्या है, आप या पानी। इससे भी सूक्ष्म क्या है, अग्नि। इससे भी सूक्ष्म क्या है, वायु। इससे भी सूक्ष्म क्या है, आकाश। उससे भी सूक्ष्म क्या है, मन। उससे भी सूक्ष्म क्या है, बुद्धि। और उसमें भी सूक्ष्म अहंकार। तो अहंकार है सबसे सूक्ष्म। तो ये जो महत्त्व है, ये महत्त्व के द्वारा अहंकार का भी रचना हुआ। अहंकार का भी उपादान है मन, बुद्धि का भी, बुद्धि भी इससे ही बना है, मन इससे बना है। तो इसलिए ये महत्त्व को कभी कभी लगता है महत्त्व मन है या चित्त है, बल्कि असल में महत्त्व एक वस्तु है जिसके द्वारा मन का भी रचना हुआ, बुद्धि का भी गठन हुआ। तो ये ऐसे महत्त्व, और महत्त्व से पहले किसका उत्पत्ति हुआ था, अहंकार। तो ये अहंकार के साथ गुण का मिश्रण होता है, प्रभाव गुण के द्वारा अहंकार प्रभावित होता है। और इस सत्व गुण का प्रभाव से अहंकार से मन का उत्पत्ति होता है और देवताओं का उत्पत्ति होता है। रजोगुण के प्रभाव से इंद्रियां का प्रकाश होता है और तमोगुण के प्रकाश से वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो देखिए ये साइंटिफिक है ना कि यह कल्पना है, ये क्या कहानी है या विज्ञान है, विज्ञान। बल्कि कोई इस विज्ञान का चर्चा नहीं हो रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस विज्ञान का चर्चा हो रहा है, क्यों नहीं, क्यों नहीं। इसका कारण है कि भारत का जो मनोभाव वो अंग्रेजों के द्वारा इतना प्रभावित हो गया कि वो भारत का जो दौलत है, भारत का जो संपदा है, उसको ग्रहण करने के लिए तैयार है। कहां कृष्ण का नौकर बनना था, अब अंग्रेजों का नौकर बनना बनके सब साहब ने उनको जो सिखाया वही केवल सिखाया। असल साइंस क्या है, ये है असल साइंस। और प्रभुपाद क्या किया, इस साइंस को, इस विज्ञान को विदेश में ले गए और वहां के जो बुद्धिमान विचारवान व्यक्ति थे उन्होंने इसको ग्रहण किया। उन्होंने सोचा हाँ ये सही विज्ञान है। तो वैसे देखिए प्रभुपाद ही भारत की महिमा सही रूप से दुनिया भर प्रचार किए थे और उन्हीं की कृपा से आज दुनिया भर इस ज्ञान का प्रसार हो रहा है। और हम लोग को क्या करना चाहिए, इस ज्ञान को सही रूप से ग्रहण करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इसका वितरण करना। तो ये है श्रीमद् भागवतम का इतिहास, श्रीमद् भागवतम का महिमा। तो सुबह को आप हर रोज भागवतम पाठ करें। मैं कोई एक श्लोक दो श्लोक नहीं पाठ किया काल और आज, मैं केवल भागवतम क्या है उसकी एक धारणा आपको देने का कोशिश की। आप क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू होगा, होता रहेगा। हाँ, नित्यम भागवत से ये भागवत हम पढ़ते रहेंगे, देखेंगे इसमें क्या अद्भुत सारे संपदा है, ज्ञान की कितना गंभीर प्रकाश हुआ है इस भागवत। और इसको अगर हम जान लेते हैं बस, तब जिंदगी बन जाएगा, जीवन का असल उद्देश्य सफल हो जाएगा, जीवन अपना सफल बना ले। भजरे हरि का नाम, ये भागवतम से हम समझ पाएंगे कौन है कृष्ण, कौन है कृष्ण के साथ हमारा संपर्क क्या है, और भागवतम से हमें पता चलेगा कैसे हम कृष्ण के साथ वो संपर्क जोड़ सकते हैं, और भागवतम से हमको पता चलेगा कृष्ण के साथ संपर्क जोड़ने से क्या फायदा होता, इसका जरूरत है। ये तीन है मूल विषय, संबंध अभिधेय प्रयोजन। संबंध क्या है? संपर्क, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, और मेरा साथ भगवान का संपर्क क्या है, भगवान के साथ मेरा संपर्क क्या है। अभिधेय, कैसे हम वो संपर्क जोड़ सकते हैं, और प्रयोजन, इस संपर्क जोड़ने का जरूरत क्या है। ये तीन विषय में जब ज्ञान प्राप्त होता है बस, तब हमें सब कुछ जानकारी है, देन वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, रियलाइज। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? ये सुनिश्चित अच्छा, वो कॉर्डलेस माइक्रोफोन ला रहा है। दिस इज द जोगोमायाज इन्फ्लुएंस। जोगोमाया के प्रभाव से कभी कभी लगता है कि कृष्ण एक साधारण बालक है, ग्वाल बाल है, और तब मन में भय होता है किसी को। जब असुर आता था तब भी उनको डर होता था, क्या कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा कृष्ण। तो ये प्यार के कारण उन्होंने ऐसे सोचते हैं। अगर मतलब ये है कि अगर पहले से ही ये पता चल जाए कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण को कोई हरा नहीं सकता है, कृष्ण सबको हरा देंगे, तब तो मजा खत्म हो जाएगा, है ना। जब लगता है कृष्ण ऐसा हो सकता है, कृष्ण को कुछ हानि हो सकता है, कृष्ण देखो कितना बड़े पहलवान है और कृष्ण इतना छोटा सा एक लड़का है, तो ये लड़ाई कैसे होगा, तो ये तो सही नहीं है। तो लड़ाई शुरू होता है, लगता है कृष्ण, हो सकता है कि कृष्ण हार से हार जाए, बल्कि उसके पश्चात जब कृष्ण जीत जाते हैं तब कैसा लगता है। देखो हाँ, जो जीत जाएगा उसको पहले से हमको अगर पता है कि वो जीत जाएगा तो वो खेल में मजा आता है। हाँ? सोचो कि कोई साधारण एक क्रिकेट क्लब के साथ अगर इंडिया 11 का मैच हो रहा है तो उस मैच में मजा आएगा, बल्कि जब इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया का खेल होता है तब मजा आता है क्योंकि वो तब कंपटीशन बराबर होता है, पता नहीं चलता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। पहले से अगर पता चल गया तो कौन जीत जाएगा तो वो खेल का मजा नहीं रहा। इसलिए ऐसा भगवान को लीला में ऐसा होता है कभी कभी तो लगता है कि हो सकता है भगवान हार जाएगा, मतलब कृष्ण हार जाएगा, बल्कि उसके पश्चात जब कृष्ण जीत जाता है, जैसा सूरत 11 के साथ अगर इंडिया 11 का मैच हुआ, साधारण दृष्टिकोण से लगेगा कि इंडिया 11 जीत जाएगा, बल्कि सूरत 11 अगर हरा दिया तो सूरत वासी का मनोभाव कैसा होगा
जी आपने बताया कि सभी भौतिक गुणों से परे होने के बाद ही भागवतम का अध्ययन कर सकते हैं, हम लोग किस तरह से इसका लाभ ले सकेंगे, हम लोग तो भी भौतिक गुणों में हैं, हम लोग किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं।
वेरी गुड, इसलिए प्रभुपाद का निर्देश है पहले हमको भगवत गीता स्टडी करना, भगवत गीता के बाद श्रीमद् भागवत। अच्छा, और यद्यपि हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और भौतिक गुणों से परे नहीं बने हैं, तो ये फायदा ये है कि भागवतम पढ़ते पढ़ते हम भगवत भौतिक गुण से मुक्त हो, भागवतम अध्ययन करने से ये हो। ऐसे नहीं कि हमको शुरू से ये पहले ही हमको मुक्त होना होगा उसके बाद पाठ करना होगा, तब तो पाठ करने कोई भी पाठ करने का लायक नहीं है। इसलिए भागवतम का एक महान गुण ये है कि यद्यपि हम लायक नहीं हैं, पर भागवतम हमको लायक बना देंगे अगर हम सही रूप से इसको पाठ करेंगे। माइक
महाराज, मैंने भागवतम में एक लाइन पढ़ी थी कि जैसे ब्रह्मा जी जब महाप्रलय होता है तो ब्रह्मा जी की कृपा से ब्रह्म लोक के सारे भक्त वैकुंठ लोक तक जाते हैं, तो जो हम नाशवंत सारा समझते हैं, प्रभु मेरे ने काफी चर्चा किया मगर मुझे सेटिस्फाइड नहीं हुआ।
क्या था?
सिक्स कैंटो में था, एक श्लोक नंबर में भूल गई मगर आगे पीछे ऐसा था कि आगे के श्लोक में योगियों द्वारा बताया गया था कि योगी ब्रह्मलोक तक पहुंच पाते हैं, और बाद में बताया हुआ था एक लाइन ऐसी थी कि ब्रह्मा जी की कृपा से महाप्रलय के समय ब्रह्मलोक के सारे भक्त और ब्रह्मा जी खुद वैकुंठ लोक जा सकते।
अर्थात देखो, ये ब्रह्मलोक में तो मृत्यु नहीं है, वहां मृत्यु नहीं होता है, ना तो वहां से कोई आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोक में ब्रह्म लोक से सत्य लोक से कोई इस भौतिक जगत के परे नहीं जा सकते। भौतिक जगत से निकलने का एकमात्र उपाय है इस पृथ्वी भूमंडल, ये जो मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम है, न तो ऊपर उच्च लोक से न तो निम्न लोक से निकल सकते हैं। साधारणतया इस भूलोक से निकलना होता है, बल्कि जब महाप्रलय होता है, जब सृष्टि नाश हो जाता है, तब ऊपर के जो लोगों हैं जहां मृत्यु नहीं है और नहीं तो जहां से वो लोग निकल सकते हैं, उन लोगों के लिए वैकुंठ लोक में वापस जाने का एक अवसर मिलता है। अच्छा, ये अवसर भी किसी का कृपा से होता है, नहीं तो देखो मृत्यु का मतलब क्या है, सब कुछ चेतना को खो बैठना। निद्रा और मृत्यु एक ही तरह है, जब हम सो जाते हैं कुछ पता चलता है, जब हम सो जाते हैं तब याद रहता है भक्ति करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, बल्कि कोई अगर हमको बोलते हैं अभी देखो मरने वाला हो, अब भगवान को याद करो, तो उसकी कृपा से हमें भगवान को याद आता है। तो ब्रह्मा जी जो सबके गुरु हैं, ब्रह्मा जी वैसे अपने भक्तों को याद देते हैं कि अब देखो भगवान को याद करो, तब तुम भगवान के पास जा सकोगे। अगर नहीं जा सकोगे तो क्या होगा, एक निद्रा के रूप में, सुषुप्ति में तुम बहुत दिन तक रह जाओगे, और फिर से जब सृष्टि शुरू होगा तब यहां पर वापस आ। प्रलय के बाद क्या होता है, जो आत्मा, जो जो आत्मा आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोक में जाने का लायक नहीं बना, वो लोग मर जाते हैं, उनका मृत्यु होता है। और मृत्यु के पश्चात क्या होता है, हाँ, मृत्यु के पश्चात सो जाते हैं, कोई चेतना नहीं रहता है। चाहे वो चेतना दो मिनट के लिए हो, खो बैठते हैं दो मिनट के लिए खोते हैं, या दो करोड़ों साल के लिए खोते हैं, इसमें कोई, जब हम सो जाते हैं याद रहता है कि हम दो मिनट सोया या दो साल सोया। तो जो आत्मा भगवत धाम में लायक जाने का लायक नहीं बना, वो लोग सुषुप्ति में रह जाते, गंभीर निद्रा में वो लोग रह जाते हैं। और निद्रा कब टूटता है, जब फिर से सृष्टि शुरू होता है। और जिसको ब्रह्मा जी का कृपा मिलता है, ब्रह्मा जी याद देते हैं अब चलो यहाँ का खेल खत्म होने वाला है, तो अब भगवान के चरण कमलों में मन को बैठ, मन को निवेश करो, निविष्ट करके भगवान के पास चलो। यस, गिव द मन।
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, कुछ आत्मा की उत्पत्ति के बारे में बताइए। जैसे आपने भी बताया था कि जब भगवान दृष्टि प्राप्त करते हैं तो सृष्टि की रचना होती है, तो उसी टाइम सारी आत्माओं का मतलब उद्गम होता है, या बाद में आगे नेक्स्ट सृष्टि की रचना होगी तभी होगा, मतलब थोड़ा सा क्लियर।
देखो आत्मा का तो सृष्टि नहीं होता है, आत्मा आध्यात्मिक जगत से, भगवत धाम से आत्मा आती है। तो भगवान के दृष्टिपात के माध्यम आत्मा इस भौतिक जगत में आती है। भगवान जब दृष्टिपात करते हैं भौतिक जगत के प्रति, पहले तो आत्मा नहीं था, जैसे मैं बोला प्रलय के समय सब आत्मा भगवान के पास वापस चले गए, चाहे कोई वैकुंठ लोक में गया और चाहे कोई भगवान के पास जाकर सोते सो गए। भगवान के पास इतना नजदीक आते हुए भी उसको पता नहीं था, पता नहीं चला कि वो भगवान के पास ही था, क्योंकि वो सो गए थे। तो इसी अवस्था में जब सृष्टि फिर से शुरू होता है, तो भगवान की दृष्टि के माध्यम उस आत्माओं ने इस भौतिक जगत में फिर आके प्रकृति के कृपा से पहले सूक्ष्म शरीर मिलता है, उसके पश्चात स्थूल शरीर मिलता है, और इस भौतिक जगत में उन लोगों ने कर्म के फेर में, कर्म के बंधन में फंस जाते।
आत्माओं का नंबर ही कांस्टेंट रहता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग,
मतलब ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आत्मा को नश्वर है। देखो आत्मा जब दूसरी जगह से आता है तो कांस्टेंट तो नहीं रह सकेगा। जैसे देखो जो कैदी जो है उसका क्या उत्पत्ति कारागार में होता है, कैदी का उत्पत्ति, कैदी कहां से आते हैं, बाहर से आते हैं कैद खाने में, कारागार में। तो कभी कभी कैदी का नंबर इंक्रीज होता है, कभी कभी डिक्रीज होता है, कभी कैद जब अपराध बढ़ जाता है तो कैदी का नंबर इंक्रीज हो जाता है, जब अपराध कम हो जाता है तो कैदी का नंबर कम हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, ओके।
आपने भी बताया है कि ऊपर के लोगों में मृत्यु नहीं होती है, तो फिर वो भौतिक जगत में कैसे?
अच्छा, ये प्रश्न है, ऊपर के जो लोक में मृत्यु नहीं होता है तो वो लोग भौतिक जगत में कैसे आते हैं? ऊपर के लोग जो है वो भी भौतिक जगत के हैं। भौतिक जगत में ब्रह्मांड होता है, भौतिक जगत कारण समुद्र में है, भौतिक जगत की उत्पत्ति कारण समुद्र में होता है। तो कारण समुद्र में भगवान कारण मुदुक्षाई विष्णु के रूप में लेटते हैं और उनका शरीर से श्वास लेने के प्रभाव से जो बुदबुदा निकलता है वो है एक एक ब्रह्मांड, और एक ब्रह्मांड में 14 लोक है, 14 भुवन है, ऊपर का 7 नीचे का 7। और हम लोग जहाँ हैं एकदम बीच में मध्यवर्ती अवस्था में, भूलोक के परे है भुवन लोक के परे है स्वर्गलोक के परे है महर लोक के परे है जनलोक के परे है तपोलोक, और तपोलोक के परे है सत्यलोक। तो सत्यलोक है सबसे ऊपर का स्थान जहां ब्रह्मा जी विराज करते हैं। और वैसे मृत्यु मर्तलोक में, इस ये जो जगह है भूमंडल, इसे मर्तलोक या मृत्युलोक कहा जाता है। यहां पर ही मृत्यु होती है। ऊपर का जो लोक है स्वर्गलोक में मृत्यु नहीं होता, इसलिए स्वर्गलोक को अधिवासियों को, स्वर्गलोक वासियों को